अब इसके बाद आयत नंबर 40 से जो मजमून शुरू होगा, या बनी इसराइल अस्कुरू नेमती अल्लती अनमतु अलैकुम वाउफू बिअहदी ऊफी बिअहदीकुम व इय्या या फरहबून। ज़रा सी इसकी समझिएगा बात। यहाँ आयत 40 से यानी रुकू नंबर 5 से जो मौजू चलेगा, मुस्तकिल 10 रुकू हम बनी इसराइल के किस्से पढ़ेंगे और अल्लाह ताला उनको नेमतों की तज़कीर याद करवाते हैं। ये बनी इसराइल कौन थे? जैसा कि हमने तारुफ में देखा था कि सूरत बकरा मदनी दौर के शुरू की सूरत है। अल्लाह के नबी सल्लम नबूवत के बाद 13 साल तक मक्का में रहे। वहाँ सिर्फ मुशरिकीन मक्का थे जो आप ही के अपने ख़ानदान के लोग थे, उम्मी थे। लेकिन मदीना में आने के बाद आपका सबका यहूद से हुआ। यहूद वहाँ कैसे पहुँचे ये आप किसी अलग सेशन में ज़रूर सुनिएगा। अलहम्दुलिल्लाह पूरी हिस्ट्री दी गई है। बस इतना कह देती हूँ कि यहूद अपने दौर के मुसलमान लोग थे। मदीना में लोग उनको रिलीजियस पीपल समझते थे और वो अपनी किताबों में नबी सल्लम की खुशखबरियों को पढ़ पढ़ कर मुंतजिर थे कि वो नबी जिसका तذکرہ हमारी तौरात और इंजील में आ चुका है, अब उसके ज़हूर का वक्त आने वाला है। और अपनी सियासी कई लड़ाइयों और कई अरूज और जवाल के बाद सूरह बनी इसराइल में इसका तذکرہ मिलता है पहले रुकू में। ये मदीना में आकर मुकीम हो गए थे, यानी हिजरत करके मदीना में आए थे। उस दिन से ये इंतज़ार कर रहे थे कि वो आखिरी नबी आए जिसका जिक्र हमारी किताबों में, और हम उसके साथ मिलकर अल्लाह का काम करें। एक चीज़ जिसको वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वो क्या थी? कि वो आखिरी नबी बनी इसराइल से नहीं, बनी इस्माइल से आएगा। तो बनी इसराइल कौन थे? हज़रत याकूब के बच्चे। बनी इस्माइल कौन थे? हज़रत इब्राहिम के दो बेटे, हज़रत इसहाक और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। यानी आपकी मेरी समझ के लिए बस इतनी बात काफ़ी है कि वहाँ सगे सौतेले का फ़र्क था। वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये किसी और गिरोह से आ सकते हैं, किसी और कबीले से आ सकते हैं। और ये जो लफ्ज़ है ना, वाउफू बियाहदी ऊफी बियाहदी को वैया या फरहबून, असल में ये वो वादा था जो इनसे इनके नबियों के ज़रिए भी लिया गया और इनकी किताबों में भी लिया गया था। और वो वादा क्या था? कि अल्लाह को एक मानोगे और आखिरी नबी जब भी आएगा तो तुमने उसको मान लेना है। यानी इनकी अपनी किताबों की रोशनी में इनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना लाजिम था। आज भी अगर ये लोग अपनी किताब पे ईमान लाएं तो इनको सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना पड़ेगा। और लोगों का डर था इसलिए फरमा दिया वैया या फरहबून, अल्लाह के सिवा किसी से ना डरना। तो अब यहाँ मदीना के उन यहूद के नाते क़यामत तक के लिए अल्लाह ताला ने एक पैगाम दे दिया इन आयात में हम मुसलमानों को। अब देखिए इस वक्त तो कुरान हम मुसलमान पढ़ रहे हैं ना, कि अगर तुमने वही किया जो उन्होंने किया था तो तुम्हारे साथ वही होगा जो उनके साथ हुआ। अभी आप जो रुकू पढ़ेंगे ना, ये पूरी उनकी हिस्ट्री है। 40 साल वादी यतीम में भटके, फिरौन का दौर गुजरा, मूसा की पैदाइश हुई, हज़रत यूसुफ का दौर, ये सारी कहानियाँ हम पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? कि तुम अपने आप पर गौर करो। तुम नाम तो अपना मुसलमानों वाला रखते हो लेकिन तुम नहीं मानते। और साथ ही साथ इन आयात में आप सोचिए ना कि मदीना में नाजिल हो रही थी और नबी सल्लम के दिल पे उतरती थी। जो आयत उतरती थी वो बाहर फैलती होगी ना। जैसे अब आज का ये लेक्चर आप बाहर जाकर जितनों को मर्जी बताएं, आप जाकर यूट्यूब से फेसबुक से इसको ले और इसके लिंक शेयर करें, मुमकिन है ना? बिल्कुल इसी तरह जब नबी सल्लम पे आयतें उतरती थी तो यहूद के कानों तक भी गुजरती थी। और अल्लाह उनको पैगाम क्या देते हैं? वह आमिनु बीमा अनजल तो। इस जुमले को नोट कर लीजिएगा, कुरान पर ईमान लाने का हुक्म है, नबी सल्लम को नबी मानने का हुक्म है। क्या पता चला अगर मदीना के वो लोग दिल के तासुब छोड़ देते, हसद दिल से निकाल देते और अल्लाह के नबी पर ईमान ले आते, तो यकीन कीजिए कि आज दुनिया का नक्शा बिल्कुल बदल जाता, आज वो दुनिया बिल्कुल मुख्तलिफ होती। लेकिन उन्होंने क्या किया? अपने दुनियावी फ़ायदों को लेने के लिए नबी को ना माना। इसलिए फरमाया वला तश्तरू बी आयाति समनन कलीला, दुनिया की अदना फवायद या दीन का सौदा करने वाले ना बनो। क्या था इनका फ़ायदा? लीडरशिप जाती थी। ये अपने आप को मजहब के नाम पर बहुत ऊंचा दिखा चुके थे। इनको लगा कि कल तक तो हम लीडर्स थे और अब हम फॉलोअर बन जाएं। और इसके लिए इन्होंने किया क्या? अपनी किताबों में जहां जहां अल्लाह के नबी के तस्करे थे उसको बदल दिया, खलत मलत कर दिया। यानी जो तौरात थी इनकी उसको इन्होंने एक्सरसाइज बुक बना दिया, जो चाहा लिखा जो चाहा मिटा दिया। इस पे अल्लाह ताला ने फरमाया, वला तलबिसुल हक बिल बातिल वा तक्तुमुल हक का, यानी हक और बातिल को मिलाने वाले ना बन जाओ, यानी शैतान के पैरोकार ना बन जाओ। हक का कुछ हिस्सा जाहिर करते थे, कुछ छुपा देते थे, यानी चेंजेस करते थे। आप देखिए कि पिछली किताबों में और कुरान में ये बहुत बड़ा फ़र्क है। कुरान की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ताला ने लिया है। आज भी देखिए 1400 साल से ऊपर हो गया टाइम, एक जबर जेर नहीं बदली और क्यामत तक नहीं बदलेगी जब तक अल्लाह चाहेगा। इन्होंने अपनी किताबों का पैगाम बदल दिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की आयात बदल दी, और कुछ इसी किस्म की बातें थी। अल्लाह ताला ने इनको आमिनु के साथ वाकी मुसला तबातु जक़ा तबर का उमर राकेन का हुक्म दिया कि नमाजें कायम करो, जक़ात दो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, यानी उम्मत मोहम्मदिया में मिल जाओ। नमाज की अदायगी, जक़ात की अदायगी, बाद जमात नमाज की अदायगी का हुक्म यहूद के तनाजर में क्यों आया? क्योंकि उनकी किताबों में भी ये चीज़ें थी। लेकिन वक्त के साथ साथ इनके उलमा ने लोगों की सहूलत के नाम पे अपने दीन को डाइल्यूट कर लिया। नहीं 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 ये कर लो, हमारी खिदमत कर दो, हमें नजराने दे दो, हम तुम्हें बख्शवा लेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता ख्वाहिशों में पढ़कर नमाज भी छोड़ दी, ज़कात भी छोड़ दी, और इज्तमाईयत वाली तो बात ही ना रही। तो क्या पता चला कि जब मजहबी तबके पर दुनिया की मोहब्बत आ रही होती है तो उस वक़्त वो लोगों की आसानियों के लिए कुछ इजाफे कर देते हैं, कुछ चीज़ें निकाल देते हैं। फिर साथ ही अल्लाह ताला ने, आप देखिए कि इनकी एक और आदत थी, लोगों को अच्छी बातों का हुक्म देते, खुद भूल जाते अपनी ज़ात को। तो फरमाया, तामुरूनन नास बिल बिर्रि व तनसौन अनफुसकुम वअन्तुम तत्लूनल किताब अफला ताकिलून। क्या तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और अपनी जानों को भूल जाते हो, हालांकि तुम किताब पढ़ते हो? अफला ताकिलून, क्या तुम्हें अक्ल नहीं है? यानी जब ये दूसरे लोगों को नबी सल्लम की महफिलों में आता जाता देखते तो कहते बहुत अच्छा काम कर रहे हो, क्योंकि इनकी दोस्तियां थी मदीना के लोगों से, लेकिन खुद मुसलमान नहीं होते थे। और इन जनरल इसमें इशारा है हर उस शख्स के लिए जो इल्म के बावजूद अमल ना करे। आज इंसान होने के नाते इंसान अपने आप को बचाए, पूरी कोशिश करे, लेकिन अगर मैं आपको वो बात कहूँ और वही बात कहती रहूँ और खुद उस पर अमल ना करूँ तो क्या मुझे इसकी फिक्र नहीं होनी चाहिए? याद रखिए कि जो बता रहा होता है ना उसको अमल भी करना होता है। तो वो लोग जो दीन के साथ किसी ताल्लुक से भी जुड़े होते हैं उनको ख़ास तौर पर अपने अमल को बहुत देखना चाहिए। फिर इसी तरह आप देखिए सिलसिला कलाम बढ़ता है, अल्लाह ताला आगे इनको कहते हैं आयत नंबर 45 में, वस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाह, सब्र और नमाज के साथ मदद लो। यानी इस दीन के रास्ते में जहाँ भी कोई मुश्किल आ गई, दुनिया के रास्ते में जहाँ भी कोई मुश्किल आ गई, आपको सब्र और नमाज साथ दिखेगा। कैसे? नमाज के दौरान इंसान क्या नहीं कर सकता? आप सो सकते हैं नमाज के दौरान? बोल सकते हैं? खा सकते हैं? लीन कर सकते हैं? नहीं कर सकते, राइट? बिल्कुल इसी तरह से याद रखिएगा कि नमाज सब्र सिखाती है। अल्लाह ताला ने ये जो दिन में 5 नमाज़ें आपके मेरे लिए मुख्तलिफ औकात में रखी हैं, ये कोई सज़ा नहीं है। आप अपने बच्चों को भी ये पॉइंट्स दे सकते हैं कि बेटा नमाज इसलिए हम पढ़ते हैं ताकि हमारे अंदर सेल्फ कंट्रोल आए। मसलन आप देखिए कि फजर की नमाज नींद को छोड़ेंगे तो पढ़ेंगे ना, जोहर की नमाज में इंसान बहुत मसरूफ होता है, कहा नहीं पहले नमाज पढ़ो। असर के वक्त पे इंसान थक जाता है थोड़ा सा, कहा नहीं पहले नमाज पढ़ो। मगरिब के वक्त पे ऐसे लग रहा होता है कि दिन जा रहा है, अभी बहुत सारे काम करने थे, ये करना था वो करना था, अल्लाह कहते जो भी हो पहले नमाज पढ़ो। और ईशा थके हारे है सारे दिन के, हिम्मत नहीं कुछ नहीं, अल्लाह कहते नमाज पढ़ के सो। तो क्या पता चला? जो 5 नमाजों के साथ अपने वक्त को जमा कर लेगा ना, उसको अल्लाह सुबहाना ताला से मुलाकात के वक्त सहूलत होगी। जो एक और चीज़ हमें इस आयत में दिखती है वो क्या है कि जिनको अल्लाह ताला से मिलना, अल्लाह ताला से मुलाकात याद रहती है, उनको कोई भी काम मुश्किल नहीं लगता। इसीलिए फरमाया, लजीन यजुन्नून अन्नहुम मुलाकू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन, बेशक वो लोग जिनको यकीन है कि वो अपने अल्लाह से, अपने रब से मुलाकात करेंगे और वो उसी की तरफ पलटाए जाएंगे। गोया कि अल्लाह ताला से मुलाकात का यकीन रखना, इसका एहसास, अल्लाह का खौफ, निगरानी का एहसास और अल्लाह से हया रखने का एहसास, ये बंदे को बेहतरीन तरीके से किस चीज़ पे लेके आता है कि मैं इस दुनिया में कुछ करूँ। यहाँ इस हिस्से में अल्लाह ताला हमें जो बात बता रहे हैं वो क्या है कि तुम आखरत में निजात पाना चाहते हो तो झूठे सहारों को छोड़ दो। आप देखिए कि हमारा दीन बहुत आसान है। जो कुरान इस वक्त आपके और मेरे सामने खुला हुआ है, ये आपको मुझे बहुत आसानी के साथ, सहूलत के साथ, अल्लाह की मर्ज़ी के साथ दुनिया में जीना सिखाता है, और उसके बाद फिर अल्लाह ताला पे नज़रें रखें। बनी इसराइल हो या आज के मुसलमान हो, याद रखिए आखरत में निजात अगर आप में अपने आमाल की बुनियाद पे करने का यकीन रखते हैं, हम हर लम्हे अपने अमल को देखेंगे, सोच के बोलेंगे, सोच के खाएंगे, सोच के सुनेंगे। और इसके अलावा दूसरी सूरत क्या है, नहीं फलां काम आ जाएगा, बनी इसराइल ने ये किया, हज़रत इब्राहिम हमारी सिफारिश कर देंगे, कभी का वी आर चोजन पीपल, हम तो अल्लाह के बेटे हैं, हम उसके चहीते हैं, अहिब्बाओ। अल्लाह ताला कहते हैं कि आखरत में निजात के लिए तुम्हें ऐसी कोई चीज़ काम नहीं आएगी, और बार बार उनको दिलाया जा रहा है एहसास कि वन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, मैंने तुम्हें तुम्हारे दौर के लोगों पर फजीलत दी। और हकीकत है कि अल्लाह जब किसी को चुन लेता है तो ये अल्लाह की बहुत नेमत होती है। अल्लाह ताला ने इनको चुना, आज किसको चुना है? आज आपको मुझे चुना है। आज अगर आप और मैं अपने आप को मुसलमान होने के नाते चेक करके देखें, आज हमारे अंदर क्या है? क्या आज उम्मते मुस्लिमा को देखकर आपको एहसास नहीं होता कि हम भी सबक भूल गए? हमने भी वो बड़ा काम जो अल्लाह ने इनको दिया था वो हमें भी दिया। दूसरे पारे में ही हम देखेंगे, आपका मेरा काम लोगों को अल्लाह से जोड़ना था, हम तो खुद ना जुड़े। ये दिन की 5 वक्त की जो नमाज है ना, ये इसी चीज़ की तैयारी है। और याद रखिएगा कि आखरत के नाते से कुछ खुशफहमियाँ और गलत फहमियाँ आज हमें भी हैं। मसलन फुला मेरे काम आ जाएगा, अल्लाह ताला कहते हैं ला तजजी नफ्सुन नफ्सिन शैया, उस दिन कोई किसी के कुछ भी काम नहीं आएगा। अब आज उम्मते मुस्लिमात तकरीबन 2 बिलियन की तादाद है। अगर आपको ये यकीन हो कि कल मैंने अपने आमाल जो दुनिया में किए हैं इसका बदला भुगतना है, तो मुझे आप बताइए क्या हम दुनिया में बेअमल होंगे? अकीदे आखिरत से मुतल्लिक खराबियों का तذکرہ है, ला तज्जी नफ्सुन के बाद वला युक्बलु मिनहा शफा, उसकी कोई सिफारिश कबूल ना की जाएगी, वला युखज़ु मिनहा अदलुन, ना इससे कोई सिफारिश कबूल की जाएगी और ना इसका कोई इवज़ कबूल किया जाएगा। आम तौर पे आप देखिए कि आखरत से मुतल्लिक यही खुशफहमियाँ होती हैं। मसलन फुला मेरी मदद करेगा, अल्लाह कहते हैं वला हुम युनसरून, कोई भी उस दिन उनकी मदद ही नहीं कर सकेगा। तो क्या पता चला कि आयत 48 में अल्लाह ने आज के मुसलमानों को भी ये बात बता दी कि अमल करोगे तो बचोगे। आज भी आपने लोगों से सुना होगा फुला मेरी मदद कर देगा। आप इसको एक छोटी सी एग्जाम्पल से समझिए। आपका बच्चा है, उसके इम्तिहान होने वाले हैं, और आप बहुत भारी फीसें देके उसको ट्यूशन भी पढ़वाती हैं, लेकिन आप देखते हैं कि वो पढ़ नहीं रहा बल्कि वक्त भी ज़ाया करता है, बाहर दोस्तों में बेकार फिरता है, और इसी तरह से सोशल मीडिया पे अपना टाइम ज़ाया करता है। आप एक दिन उसको कहती हैं, बेटा आपको यकीन है कि आपके पेपर होने वाले हैं? वो कहता है जी मामा। अच्छा, तो किताब खोली है आपने? नहीं। सबक याद है आपको? नहीं। तो आप कहते हैं, बेटा फिर आप इतने रिलैक्स क्यों बैठे हैं? आगे से कहते हैं, मामा मैंने किसी से बात कर ली है, वो मुझे सवालों के जवाब बता देगा। एक सूरज ये होगी ना। दूसरे वो कहते हैं, मामा वो जो एग्जामिनर है ना वो मेरा दोस्त है, और मामा वहाँ वो जो अंदर एक हेल्पर होता है ना, मैंने उससे थोड़ी सी पैसे दे के बात कर ली है, वो मुझे पेपर हल करवा देगा। अब जिसको इन दो तीन बातों का यकीन है, बताइए वो क्यों पढ़े? या वो कहते वो जो पेपर चेकर है ना वो तो अब्बा का दोस्त है। बस ये है आखरत, सीधी सी बात। अगर मुझे अपने पढ़े हुए पे खुद अपना पेपर करने का यकीन होगा तो मैं तो रात को भी जागूंगी, कॉफ़ी भी पीऊँगी, चाय भी पीऊँगी, मैं किसी से कहूँगी मुझे पढ़ा दो, मुझे शादियों में नहीं जाना, मुझे अपना वक्त ज़ाया नहीं करना, मैं बाज़ार नहीं जाऊँगी कि मेरा पेपर है। बस इसको समझिए, वो लोग जो इस दुनिया को एक इम्तिहान का समझते हैं वो तो कभी अपना वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, और जो इसके बरक्स हैं तो बेअमली का शिकार होंगे। इसीलिए फिर बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने मलामत की है। ये आयत नंबर 49 से 61 देखिए, बनी इसराइल को बार बार कहा जा रहा है कि या बनी इसराइल अस्करु नेमती अल्लती फजीलते दी नामात दिए, अल्लाह ने तुम्हें कुछ ये दिया वो दिया। जैसे आप अपने बच्चे से कहते हो, बेटा देखो हम तुम पे कितनी मेहनत कर रहे हैं ना, देखो अब्बा ने आपको साइकिल दिला दी, अबू ने आपको कंप्यूटर दिला दिया, आप कितनी फीस दी जा रही है। तो जब आप ये नेमते देते तो इसका मतलब कोई बच्चे को शर्मिंदा करना नहीं होता, बल्कि इसका मकसद क्या होता है कि बच्चा पढ़े। तो अल्लाह ताला भी यहाँ कह रहे हैं कि देखो तुम्हें इतनी जो नेमते दी हैं, तुम्हें दुश्मन से निजात दी। इसी के दौरान में वो किस्सा गुजरता है जो फिरौन जैसा एक दुश्मन इनके सर पे था, लेकिन अल्लाह ने उसको पानी में डुबो दिया। अल्लाह ने इनकी बेटियों को वो कत्ल करवा देता था, बेटों को कत्ल कराता था, बेटियों को जिंदा रखाता था। वो सारी निजात का तस्करा करके, यानी ये जो आयते हैं ना 49 से 61, आप कह लीजिए कि बनी इसराइल की 40 साल हिस्ट्री है। रास्ता, पानी में रास्ते बना दिए, अल्लाह ने दरिया को फाड़ दिया। क्या ये अल्लाह की छोटी कुदरत है? लेकिन बनी इसराइल की आदत क्या थी कि वो नेमतों को पाकर सरकश हो जाते थे। और अफसोस की बात है कि आज भी आम तौर पे लोग ऐसा ही रवैया अख्तियार करते हैं। कम दौलत होती है तो कम गुनाह, कम फिस्क, कम नाफरमानियाँ। और साथ ही साथ बनी इसराइल का अपने रब और अपने नबी के साथ बड़ा ही बेअदबी का सलूक था। अल्लाह ताला बार बार नाफरमानियों के बावजूद बनी इसराइल को नेमते दे और वो बार बार अल्लाह ताला की नाफरमानी करें। असल में इसमें आपके मेरे लिए पैगाम है कि मुसलमानों तुम सोचो, चूंकि हमने पीछे फासिकीन की बात की ना, तो फिस्क एक कबीरा गुनाह, वक्त के नबी की बात ना मानना। और यहाँ ये पैगाम दिया जा रहा है कि नाफरमानियाँ नेमतों के जवाल का सबब बनती हैं। आज आप देखिए कि हम बेबरकती की बात करते हैं, पूरी दुनिया में जहर अल फसाद की कैफियत है। हर बंदा परेशान, परेशानियाँ, ये है वो है, लेकिन कभी आपने सोचा कि वजह क्या है? क्या आपके मेरे गुनाह? वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम। अल्लाह कहता है लोगों तुम्हें जो तकलीफ पहुँचती है वो तुम्हारे किसी गुनाह का कफारा होता है, किसी गुनाह की वजह से। अगर आप देखिए कि आप जली हुई रोटी खा लें तो पेट आपको ही होगी ना, पेट में दर्द आपके होगा ना। अब एक डॉक्टर साहब के पास जाहिर के पेट में बड़ा दर्द है, पेट में बड़ा दर्द है, अब ये नहीं बता रहा कि रात को मैंने क्या खाया या कितना खाया, कसूर तो अपना था, तो डॉक्टर की दवा उसको फ़ायदा तो नहीं देगी। तो हम सबको सोचना है कि हम अपने गुनाहों को इतना लाइट क्यों लेते हैं। कुरान आपको मुझे शर्मिंदा नहीं करता, लेकिन एहसास दिलाता है। फिर एक और खराबी जो उनमें भी पैदा हुई थी, आज हम में भी है, कहते थे हम तो एक गिरोह से, चूँकि हम यहूदी हैं इसलिए हम बच जाएंगे। जैसे आज हम मुसलमान कहते हैं हम तो जी उम्मत मोहम्मदिया से हैं, हम तो सैयद हैं, हम तो मतलब फलां सिलसिले से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे नाना तो हाफिज़ थे, दादा तो हाफिज़ थे। तो अल्लाह ताला आगे आयत 62 में पैगाम क्या देते हैं, किसी गिरोह से नस्बत आखरत में निजात के लिए काफ़ी नहीं है, बल्कि मना मना बिल्ला ही वल यौमिल आखिर वमिला सालेहन। चाहे वो मुसलमान हो, साबी हो, यहूदी हो, नसरानी हो, चार बड़े गिरोहों का नाम लेके अल्लाह ने जन्नत में दाखिले की बात क्या कर दी कि अल्लाह और यौम आखरत पर ईमान लाने के बाद अमल सवाले करने वाले के साथ बेहतर अजर का वादा है। तो आपके मेरे लिए यहाँ वो शेर काफ़ी फ़ायदेमंद होगा कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाक की अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी। आज आप और मैं लफ्ज़ मोहम्मदी लगा लें, मुस्लिम लगा लें, अपने नाम के साथ कोई भी आप बड़ा बड़ा लकब लगा लें, नहीं बचेंगे जब तक काम नहीं करेंगे। फिर उसके बाद आप देखिए कि बनी इसराइल का एक वाक़या आयत 63 से 66 में है, जिसमें अल्लाह ताला ने एक इबरतनाक सज़ा इनको दी। और वो क्या किया था, वही सख़स नमीसा ककुम व रफा नफ़ ककुम अतूर खुजू मा अतई नाकुम भी कुवा वस कुरु माफ़ी ही लाकुम तत्तकुन। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए एक तो इनको फ़िरौन से निजात दिलाई, जो मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत का एक बहुत बड़ा मिशन था वो पूरा हुआ। दूसरा क्या था कि इनको तौरात दी गई। कई सालों से ये कौम फिरौन की गुलामी में रहने की वजह से ज़हनी तौर पे गुलाम हो चुकी थी, बेगार लेते, मेहनत करते, कराते, ये होते। अब ये कौम चाहती थी कि इनको कुछ हिदायत मिले। अल्लाह ताला ने फिरौन को जब डुबोया, तो अब अगर मूसा अलैहिस्सलाम हुक्मरानी के शौकीन होते, कोई सियासी लीडर होते, तो वापस जाते और मिस्र में फिरौन के और उसके महल्लात और उसके दरबार पे कब्ज़ा कर लेते। लेकिन अब नबियों का ये एजेंडा नहीं होता, अल्लाह ने उनको जब फिरौन से निजात दी, आप इसको ज़रा आज़ादी के लफ्ज़ के साथ समझिएगा, आप कुछ रिलेट कर पाएंगे तो मुझे खुशी होगी। हमने भी एक वक्त में आज़ादी का नारा लगाया था कि हम एक आज़ाद रियासत लेकर उसमें अल्लाह का निज़ाम नाफिज करेंगे, लेकिन हुआ क्या? आज 70 से ऊपर साल हो गए, हम वहीं खड़े दिखते हैं, या फिर हम एक कोल्लू के बैल की तरह घूम रहे हैं। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए बनी इसराइल को ये पैगाम दिया था कि भागे चलो, जब समंदर में या दरिया में रास्ता बना तो बनी इसराइल दूसरी तरफ है, मिस्र पीछे रह गया जहाँ फिरौन था। इन्होंने वापस जाना था अपने मदरलैंड जिसको सीरिया या शाम कहते हैं। अब जितने सालों में ये कौम मिस्र में गुलाम बनी रही, हजरत यूसुफ के दौर से लेके मूसा के दौर तक, वहाँ इमालका नाम की एक कौम ने कब्जा कर लिया। जगह खाली तो नहीं रहती, कहते खाली घरों में जिन्नात आ जाते हैं, मुल्क भी खाली नहीं रहते। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए इनको वादा दिया था कि तुम जाकर उस कौम से जिहाद करो और फतह तुम्हारी होगी। पहले से लिख दिया था कि तुम्हें वो शहर मिलेगा, लेकिन गुलामी में बदल जाता है कौमों का ज़मीर। ये कौम सुस्त हो गई, लिथार्जिक हो गई, नतीजा क्या निकला कि ये जिहाद का इनकार करके वहीं बैठ गए। अल्लाह ने उसकी सज़ा में इनको 40 साल तक वादिय ती में धक्के खाने के लिए छोड़ दिया। उसमें वो बड़ी नस्ल जो बाप और दादाओं की सूरत में थी वो ख़त्म हुई और इनकी एक नई नस्ल तैयार हुई, जिसने सहरा की सऊबते सही उसी के अंदर भी मन और सलवा भी उतरा, और इनको अल्लाह ताला ने तौरात भी दी। मूसा 40 रातों के लिए कोहे तूर पे गए, इन्होंने पीछे से बछड़ा बना लिया। ये कहानी आपने सुनी हुई है, मुझे यकीन है ये सब बातें आपको पता है, लेकिन यहाँ इस वक्त हमारा इन बातों को लेने का मकसद क्या है? खुजू मातैनाकुम बिकुव्वा। अगर आप इस पैगाम को आयत 63 को जहन में रखकर आज उम्मते मुस्लिमा को देखिए, तो हमें क्या ये हुक्म नहीं है? जो कुरान तुम्हें दिया उसको कुव्वत से लो, अल्लाह के हुक्म पर बेचू चरा अमल करो, इतने सवाल ना पूछा करो, इतनी बातें ना किया करो। तो गोया के इन्होंने तौरात को लेने से इनकार किया, अल्लाह ने इनके ऊपर सख्ती कर दी।